نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، یہ ہم تربیتی سیشنز اپنے ہر مہینے کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو دوسرے فیلڈس میں. جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم محرم کے حوالے سے بھی بات کی، پھر ہم اس سے پہلے ذی الحج کے حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ جو اوکیژنز آتے ہیں ان پہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسا بیہیو کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے دوسروں کے ساتھ معاملات میں کیسے رہنا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں آنے والے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان میں کس طرح سے ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی جس چیز پہ بات کریں گے بڑی اہم چیز ہے، جو کہ ہمارے روزمرہ زندگی سے ہی اس کا بھی تعلق ہے، یعنی بیمار کی عیادت کرنا. آپ دیکھیں، اس کو ہم ویسے جب کرتے ہیں، الحمدللہ سبھی لوگ جو بیمار کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عیادت کریں جائیں، مگر رسم دنیا کے حوالے سے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک دنیا کی رسم ہے تو ٹھیک ہے، نبھانی ہے. کوئی سسرالی رشتہ دار ہیں یا کوئی دوست احباب ہیں تو وہ بعد میں کہیں گے کہ جی ہماری طرف آئے نہیں آپ، ہم نے بیمار تھی، آپ نے میرا حال نہیں پوچھا. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حال احوال لے لیں. حالانکہ یہ بھی ایک آپ کو معلوم ہے مذہبی فریضہ ہے ہمارا کہ مریض کی ہم غمخواری کریں، درد مندی کریں، اس کے ساتھ غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ جو غفلت ہے وہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو. کیوں؟ اس کی ہمیں ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا پروردگار، آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی وہاں پہ، اس کی رحمت ہوتی، اللہ تعالیٰ مریض کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو یہ مسلم کی حدیث ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ ایک حق ہے. مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں نا، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ بیمار پڑے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا اجر و ثواب بتا دیتی ہوں، اس کی فضیلت بتا دیتی ہوں، تاکہ آپ کے پتہ چلے آپ کو کہ ہم ویسے نیکی کے کاموں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، الحمدللہ کہ ہم کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے رہیں. تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یعنی ہم اس کو شاید نیکی سمجھ کے نہیں کرتے، ایک رسم نبھانے کے طور پہ کرتے ہیں، مگر اسی عمل کو آپ نیکی بنا سکتے ہیں جو آپ عام روٹین میں کرتے ہی رہتے ہیں صرف نیت کے بدلنے سے. لیکن حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت کا باغ ملتا ہے. تو دیکھیں، تھوڑا سا اپنی نیت کو بدل لینے سے آپ نے کتنا اجر کما لیا. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہنے کا ذریعہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ دریائے رحمت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو دریائے رحمت میں غوطے لگاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں رہتا ہے وہ. کیا ہم اللہ کی رحمت نہیں چاہتے اپنے لیے؟ कि हम अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की बीमार पुरसी के लिए जाता है, उस वक़्त तक वो जन्नत के बागीचे में होता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। यानी इतना बड़ा नेकी का काम है ये। हम थोड़ी बहुत बात के ऊपर तो बिल्कुल इसको इग्नोर कर देते हैं कि इयादत करना क्या, जाना क्या, इतनी दूर है या क्या, छोड़ो। इयादत आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, अगर दूर है फ़ोन पे कर लें, फ़ोन कर लें, वरना आप विज़िट करें। मैं आपको आदाब भी बताऊंगी इंशाल्लाह इसके। सबसे पहले आप इसका अजर सुन लें ताकि आपको शौक़ पैदा हो कि हम कोई भी बीमार हो तो उसकी इयादत ज़रूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरीज़ की इयादत करता है तो आसमान से आवाज़ देने वाला फ़रिश्ता आवाज़ देता है। हमें तो नहीं आवाज़ सुनती, लेकिन एक फ़रिश्ता आसमान से आवाज़ दे रहा होता है। और वो क्या कहता है? तेरा भला हो, तेरा आना जाना मुबारक हो। देखिए अब ये कौन कह रहा है, ये कौन भले की दुआ मांग रहा है? इंसान नहीं, फरिश्ता। कि तेरा भला हो, तेरा आना जाना मुबारक हो, और तूने जन्नत में रहने की जगह बना ली। देखिए इससे इंसान जहन्नुम से भी दूर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स, अब ये गौर से सुनिएगा, जो शख्स बावजू होकर सवाब हासिल करने के लिए, अब हमारी नियत क्या होनी चाहिए कि मुझे सवाब मिले, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ये नियत करें, ये कोई यानी आपकी तरफ से कोई लालच नहीं है, बल्कि ये ही नियत रखनी चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला अजर दे इसके ऊपर। तो जो शख्स भी वज़ू करके और सवाब हासिल करने के लिए अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए निकलता है, तो 70 साल 70 ईयर्स के डिस्टेंस के बराबर उसे जहन्नुम से दूर कर दिया जाता है। इससे क्या पता चला? एक तो कि मरीज़ की आदत के लिए आप बावजू होके जाएं, तो इससे भी आपको और सवाब मिलेगा, और 70 साल की मसाफत के बराबर आपको जहन्नुम से दूर कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को छोटी सी भी बात होती थी तो उसकी भी इयादत करने चले जाते थे। किसी को आँख की तकलीफ़ थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे भी उसकी इयादत की थी। अब बात असल जो हम आज करना चाहते हैं वो है इसके आदाब। इसके आदाब क्या हों? देखिए बीमार पुरसी के भी तो आदाब है ना। बस चले गए और जाके अगर हमने मरीज़ को तंग कर दिया, हमारे आने की वजह से उसको अगर तकलीफ़ हो गई, तो बताएं हमारा आने का क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा बजाय इसके कि हम अजर कमाते, हम उसके लिए जहमत का बायस बन गए। तो ये नहीं करना। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे जाने से उसको जहमत होगी, तो बेहतर है कि आप फ़ोन पे ही उसका हाल पूछ लें। और लेकिन फ़ोन भी फिर इतना लंबा ना करें कि उसका गला सूख जाए बता बता के आपको, और आपके सवाल जवाब ख़त्म ना हो। इयादत का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको इंगेज रखें बातों में और घंटों उससे बात करते रहें, ये इयादत नहीं है। जब भी कोई किसी की इयादत के लिए जाए तो उसको क्या करना चाहिए? वो उसका हाल पूछे, उसकी सेहत आफियत और तंदरुस्ती के लिए दुआ करे, और इसके पास ऐसी बातें करे जिससे उसको खुशी हो, राहत हो, आराम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरीज़ के पास पहुंचते थे तो पूछते थे, कई फ़ता जी दुका, कैसी तबीयत है आपकी? फिर तसल्ली देते थे, फिर फरमाते थे, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कि घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा, खुदा ने चाहा तो ये मर्ज जाता रहेगा, और ये मर्ज तो गुनाहों से पाक होने का ज़रिया साबित होगा इंशाअल्लाह। देखिए आपके तो गुनाह साफ हो रहे हैं, झड़ रहे हैं आपके गुनाह, उससे देखिए मरीज़ को कितनी खुशी मिलेगी ना आपकी इस बात से। तो ये सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? दर्द और तकलीफ़ की जगह पे सीधा हाथ फेरते थे और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अधहिबिल बासा रब्बन्नासी इश्फीही وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یہ بخاری و مسلم میں بھی ہے، اگر آپ وہاں سے بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعا کر کے، اور اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما، تیرے سوا کسی سے شفا کی توقع نہیں، ایسی شفا اس کو دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے. پھر دوسری بات جو ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سہرانے بیٹھتے اور 7 دفعہ ایک کلمہ کہا کرتے تھے. اور یہ کلمہ اس لیے اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دعا 7 دفعہ پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا، الا یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو. یہ مشکات کی روایت ہے. اور یہ کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم، اسأل یعنی میں سوال کرتا ہوں، اللہ العظیم اللہ جو عظیم ہے اس سے، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک کہ وہ تجھے شفا بخشے. سمپل سے یہ کلمات. تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ کیا ہوتی تھی کہ ایسے کلمات پڑھے جائیں، ایسی بات کی جائے کہ جس سے کہ گھر والوں کو بھی تسلی ملے، اس کو خود بھی تسلی ملے، سب سے زیادہ تو اس کو تسلی ملے. کیونکہ جب آپ دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو بہت جلدی مایوس ہونے لگتا ہے نا، بے صبرا ہو جاتا ہے. تو اس کو ایسی آپ بات کریں گے جو ہمدردی کی بھی بات ہوگی، اس کو صبر کی بھی تلقین ہوگی، اس کو اجر و ثواب کی طرف بھی آپ توجہ دلائیں کہ دیکھو تمہیں کتنا اجر مل رہا ہوگا، کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے پر بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو تمہیں کتنا اجر مل رہا ہوگا. یعنی آپ ایسی بات کریں گے کہ جس سے کہ اس کو تسلی ہو، تشفی ہو. آپ نے اس کے لیے زحمت نہیں بننا. اگر وہ آپ کا قریبی کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یا بہت قریبی کوئی دوست ہے، تو آپ اس کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ مثلا اگر وہ اکیلا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، تو آپ اس کے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بال سنوارنے کی ضرورت ہے، کنگھی کر دیں، اس کی ضرورت کی چیزیں ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیں، اس کے قریب کی جو جگہ ہے اس کو صاف ستھرا کر دیں، اس کا بستر وغیرہ ٹھیک کر دیں، اگر دوائی کا وقت ہے اس کو دوائی پلا دیں. اگر وہ آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی خدمت کی ضرورت ہے مجھے بتائیں، تو ان سے چھوٹی چھوٹی خدمات سے بھی اس کا دل خوش ہوگا. دیکھیں وہ آپ کو قدر کی نظر سے دیکھے گا، اور یہی وہ لمحات ہوں گے کہ وہ بیمار آپ کے لیے دعا کرے گا. اور جو بیمار سے دعا لینا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. بیمار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ بیمار کے سے دعا کروائی جائے. ابن ماجہ میں ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو. اہم بات سن لیں، مریض کی دعا ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں کی دعا. سبحان اللہ، میں نے فرشتے بھی پاک صاحب معصوم مخلوق ہے نا، اس کو بھی جو بیمار ہے یہ بھی گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا ہے. تو آپ ایسی چانس کو، ایسی اپرچونیٹیوں کو کیوں گنواتے ہیں؟ اس سے ضرور کہیں کہ میرے لیے آپ دعا کریں، تو اس سے دعا ضرور کروایا کریں. اور مگر اہم بات یہ ہے، ایسی وہ کسی حالت میں نہ ہو کہ وہ دعا کی کنڈیشن میں ہی نہ ہو، مثلا اتنے سخت تیز بخار میں ہے یا اتنی تکلیف میں ہے اور آپ اس کو زور لگا رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، یہ تو سنت ہے. تو ایسے نہیں، آپ نے دیکھنا یہی ہے کہ کس چیز کے اندر اس کے لیے آرام ہے، اور ایسی باتوں کی طرف اس کو لگایا جائے جس سے اس کا دھیان اپنی تکلیف سے بٹ جائے. ٹھیک ہے، مگر حکمت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بھی حکمت سے کرنی ہیں. तो आप उसको जो तसल्ली देंगे मसलन, तो ये देखें कि कोई भी शिकवे शिकायत का कलमा उसकी ज़ुबान पे ना आए। बातों बातों में उसको ऐसी बातें कहें कि मसलन बीमारी अल्लाह की तरफ से ही है और बीमारियों से बचाने वाला भी अल्लाह है, तो उसी से आप दुआ करें, आप खुद भी करें, हम भी दुआ करते हैं, शिफा उसके हाथ में है। ऐसा भी वो ना हो कि वो अल्लाह रहम फरमाए कि ऐसी हालत में कहीं शिर्क ना कर बैठे कि वो किसी और को शिफा देने वाला समझ ले। तो दिल से जब उसके लिए दुआ भी करें तो उससे उसके लिए दिल से दुआ करें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे इयादत के मौके पर, तो आप मरीज़ की पेशानी पर, पेट पर या सीने पर, जिस जगह भी तकलीफ़ होती थी वहाँ पे अपना दायां हाथ रखते थे और फिर उसको फेरते हुए दुआ करते थे। इस तरीक़े को हम दम करना भी कहते हैं ना। तो दम के लिए बहुत सारे यानी ऐसे कलिमात भी हैं जो सुन्नत से भी मिलते हैं कि आप किस किस तरह से किन किन कलिमात को पढ़ के दम कर सकते हैं। जैसे मसलन सूरह फातिहा को आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, सूरह फातिहा तो सबको ही आती है, सूरह फातिहा को आप बिस्मिल्लाह करके और फिर उसके बाद उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह बीमार एक और आयात शिफा जो हैं वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 है, वनुनज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 14 है, व यशफी सुदूर कौम मुमिनीन। आप नंबर लिख लें ताकि आप लोग वहाँ से फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को सारी लिखवाऊँ। इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 57, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तो ये भी है ये आयत भी। इसी तरह हामीम सजदा की 44 नंबर आयत है, हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा। और इसी तरह सूरह शुअरा की आयत नंबर 80, व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफी, जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा अता फरमाता है। इसी तरह एक बहुत ही प्यारी है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 118 है, इसके ज़रिए भी आप, ये भी आयत शिफा है, रब्बे फिर वरहम व अंत खैरु राहिमीन। खुद भी पढ़े मरीज़ या कोई आए तो वो भी उसके लिए पढ़ सकता है। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत नंबर 69, कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है सूरह अंबिया में 83 में, तो जब उन्होंने अपने रब से कहा था अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, और इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सारी दुआएं हैं, यानी आप इसी तरह हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 36 भी बहुत अच्छी है, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये सारी ऐसी हैं जो आयात हैं शिफा की, और ये यानी पढ़ सकता है मरीज़ भी, पढ़े उसके पास आने वाले भी पढ़े। दम के लिए जैसे मैंने आपको बताया अभी, दम की एक आपको दुआ बताई है, और दूसरी भी जो दो आपको मैंने बताई है ना, कि एक वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ फेरते और फिर वो पढ़ते थे, और फिर दूसरी मैंने आपको वो बताई है कि मौत के सिवा हर चीज़ का ये उसके अंदर इलाज है। तो ये हैं कुछ जिक्र, यानी जिक्र अस्कार से भी इंसान इलाज करे, सिर्फ दवाओं से नहीं करे, जिक्र से भी करे। और बीमार के लिए जो बेहतरीन जिक्र है, अगर इंसान कभी खुद बीमार पड़ जाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जिक्र जो है ना 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे हल्की बीमारी कौन सी है, फिक्र और परेशानी, यानी जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन एंग्जाइटी होने लगती है आपको, अक्सर लोगों को ये परेशानी रहती है, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये उसका भी इलाज है। अगर ये सबसे हल्की तकलीफ है जिसका इलाज है, इसके अलावा और 98 बीमारियों का इलाज है, यानी कुल 99 बीमारियों का इलाज है इस जिक्र में। और आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहती थी, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसका रब इसकी तस्दीक करते हुए कहता है, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं सबसे बड़ा हूँ। और जब वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं। ये कलिमात आप लिखते जाएं। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे लिए तारीफ़ है और मेरे लिए बादशाही है। उसने ये कहा ना, तो अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, गुनाह से फेरना और नेकी करने की हिम्मत देना भी सिर्फ मेरा ही काम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये सारे कलिमात अपनी बीमारी में पढ़े, अब ये जितने चारों मैंने आपको कलिमात बताए हैं, जो ये अपनी बीमारी में पड़े फिर वो उसी में मर जाए, तो उसे जहन्नुम की आग नहीं खाएगी। बड़े अहम कलिमात हैं ये, उसको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। सुभान अल्लाह। तो बजाय बीमारी में, बीमार के लिए भी इसके अंदर एटिकेट्स हैं। तो जब बीमार भी इंसान होता है, तो बजाय हाय वाय करते रहने के, शिकवे शिकायतें करते रहने के, हम ज़्यादातर कह रहे क्या कर रहे होते हैं, हाय हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय, उसकी बजाय ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, उसकी बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द, ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलिमात कहें। शिफा भी है इनमें। और इनमें आप देखें कि अगर उसी मर्ज में मौत आ गई तो हुस्ने खात्मा भी है। सुभान अल्लाह। फिर मरीज़ के पास ज़्यादा देर बैठ के बातें ना की जाए, ना कोई ज़्यादा शोर वगुल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मरीज़ के पास ज़्यादा देर तक ना बैठना और शोर और शगब ना करना सुन्नत है। कि आप बैठे हुए एक घंटा हो गया बैठे हुए, अनलेस के मरीज़ ख़ुद इसरार करे कि मसलन वो अकेला है या उसको घबराहट है, वो आपके बैठने से उसको तसल्ली मिल रही है, तो फिर आप बैठ जाएं। लेकिन अदरवाइज़ आप गए, आपने इयादत की और वापस मोड़ा है। कई लोग घंटों बैठे रहते हैं और उसकी शक्ल देखते रहते हैं, ना कुछ बोलते हैं और ना कोई दुआ करते हैं, बस वो उन्होंने रस्में दुनिया निभानी है, या उन्होंने ये एक अपना शायद कोई एक बोझ उतारना है कि वो आके बैठ गए और उसके बाद उठ के चले गए। तो ये तरीका नहीं है इयादत का। दूसरी एक अहम बात ये है इसके अंदर कि देखिए, आजकल हमने जो अपने तौर पे कुछ ऐसी चीज़ों को अपने लिए फ़र्ज़ कर लिया एक तरह से कि ये चीज़ होगी तो फिर ही मैं इयादत के लिए जा सकता हूँ। मसलन हम कहते हैं फूल अब लें, अब बुके लें, या कोई बलून्स लें तो फिर हम जाएंगे। आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तो कोई ऐसा पता नहीं चल रहा कि उन्होंने कोई बड़े बड़े कोई फूल और बुके और कोई बड़ा एहतमाम किया और फिर ये गए। अगर आप कर सकते हैं आसानी के साथ, या अगर वो इतने यानी कम कीमत के हैं तो आप ले लें। लेकिन जैसे मसलन $25-30 अगर आप खर्च कर रहे हैं एक बुके पे, तो ये इसराफ है। और कई दफ़ा मैंने देखा है, मैं मरीजों के लिए जब जाती हूँ तो पूरी पूरी जगह पे बुके ही बुके से पड़े हुए। अब मुझे बताएं कि वो इंसान उनका क्या करेगा, यहाँ के फूल तो खुशबू भी नहीं देते। तो मैं यही सोचती हूँ कि इतने लोगों ने कितना इसराफ किया, इससे बेहतर नहीं था कि वो इस बंदे की तरफ से सदका कर देते इस पैसों को, कि अल्लाह ताला इसको शिफा देना। अब वो एक उसके लिए भी वबाले जान बन जाते हैं, उस मरीज़ के लिए भी, क्योंकि उसको उठा के उनको फेंकना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो भी एक मसला है उसके लिए। तो इससे बेहतर सबसे बड़ा तोहफा आपकी दुआएं हैं। या अगर आप कुछ ले जाना चाहते हैं, कोई फल ले जाएं जो वो खा ले, उसके काम आ जाए, उसके बच्चे खा लें, बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ ले जाएं जिससे वो खुश हो जाएं, चलो किसी के काम तो आए। फूल ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, खुशबू ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये इंतहाई महंगे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपका वो पैसे खर्च ना इसराफ बन जाए। और दूसरी चीज़, कहीं ऐसा ना हो कि ये रस्म आपको किसी की इयादत करने से रोक दे, क्योंकि फिर इंसान फ्रीक्वेंटली तो नहीं जा सकता इयादत करने। अगर एक मरीज़ पे ही उसने $10-20 खर्च कर दिए, तो अगली दफ़ा फिर जाएगा। अगर हर हफ्ते वो जा रहा है मरीज़ों को देखने के लिए, तो हर हफ्ते क्या वो इतने पैसे खर्चेगा? इससे बेहतर है अगर आप हो सके तो आप कुछ खाना बना के ले जाएं ताकि कुछ दिन तक उसको सहूलत हो जाए। हम यहाँ पे अक्सर शिकायत करते हैं, बहुत हमने सुना है कि हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे हाय काश कोई ज़रूरतमंद होता तो हम उसके लिए उसको ये भाई हमारे घर में बच्चा हुआ इतना खाना होता तो उसको दे देते। ठीक है, यहाँ पे फ़कीर ज़रूरतमंद नहीं है, ठीक है यहाँ पे मेड ज़रूरतमंद नहीं है आपके पास, लेकिन अगर आप आंखें खोल के देखें तो आपको इर्द गिर्द बहुत सारे मरीज़ ज़रूरतमंद ज़रूर मिल जाते हैं, तो आप उन तक क्यों नहीं पहुँचाते? एक होता है खाने को जब वो बासी हो जाए, सड़ने लगे फ्रिज में, तब आपने किसी फकीर को या किसी मेड को दिया, और एक है जब आपने खाना फ्रेश बनाया उसमें से आपने हिस्सा निकाला और किसी मरीज़ को दे दिया, तो आप बताएं अजर व सवाब में कौन सा ज़्यादा होगा? मोमिन तो हमेशा अजर का हरीस रहता है ना, कौन सी चीज़ ज़्यादा अजर व सवाब वाली होगी? तो इसलिए एक तो ये महंगे फूलों बलूनों और इस तरह की चीज़ों को रास्ते की रुकावट ना बनाएं, शरीयत में इसकी कोई दलील नहीं मिलती। हाँ, दिल खुश करने के लिए किसी का आपकी नीयत है कि इसका दिल खुश हो जाए तो हाँ आप कोई छोटी मोटी चीज़ ले जाइए, आप ऐसी चीज़ लेके जाएं जिससे उसको सहूलत मिले, ठीक है, और ये कोई चीज़ भी हो सकती है, उसमें आपके महंगे तरीन फूलों से कोई ज़्यादा आपकी अयादत नहीं होगी और ज़्यादा आपके दर्जे नहीं, उसमें सवाब ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, फिर जब आप घर से जाएं तो आप ये सोच के जाएं कि मैंने वहाँ पे जाके क्या बात करनी है। बेढंगी बेतुकी बातें करने से परहेज़ करें, ऐसी बातें करें जिसमें सब्र की तलकीन हो और उसको हौसला दें आप कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। ला बासा तहूरुन, इंशाल्लाह में भी ऐसी ही आपको चीज़ मिलती है गुनाहों से पाक होने का, और जो मैंने आपको दूसरे दम वाली दुआ बताई उसमें भी यही है कि आपने दुआ की है कि अल्लाह ताला इसको शिफा दे, तो हमेशा उसको भी उम्मीद दिलाएं कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर शिफा होगी, तो तसल्ली दें उसको, बर्दाश्त की तलकीन करें उसको, सब्र की फजीलतें बताएं उसको। कोई एक आध हदीस घर से आप पढ़ के चली जाएं कि मैंने ये हदीस उस तक पहुंचानी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने अपने जिस्म की दर्द के मुतालिक बताया था तो आपने फरमाया दर्द की जगह पे अपना दायां हाथ रखो और फिर ये कहो बिस्मिल्लाह ही, और 7 दफ़ा कहो आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाही व कुदरतिही मिन शर्री मा अजिदु व उहादिरु, मैं अल्लाह से उसकी कुदरत और कुव्वत के साथ पनाह मांगता हूँ इस तकलीफ से जिसे महसूस करता हूँ और जिससे डरता हूँ। तो ऐसे उनसे आप ज़रूर ऐसे दम करें, चाहे आप ठीक है दूसरी दवाएं भी करें, वो भी करने में कोई हर्ज नहीं, इलाज आप करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूर करते जाएं। और फिर जब आप किसी भी इंसान को बड़ी मुसीबत में बीमारी में मुब्तिला देखें तो याद रखें अपने लिए भी दुआ किया करें, जिस रब ने आपको इस बीमारी से महफूज रखा तो उसका शुक्र नहीं आपने अदा करना, इसकी इस मरीज़ की जगह आप भी दर्द में करा रहे हो सकते थे, तो उस वक़्त ज़रूर कहें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी, ये आप ज़रूर दुआ याद कर लें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया, मैं मुबतला कभी उस बीमारी से जिसमें उसने तुझे मुबतला किया, व फद्दलनी अला कसीरन, और फजीलत दी मुझे बहुत सों पर, मिम्मन खलक खलका तफदीला, जो बहुत सी मखलूक पर उसमें से जो उसने पैदा की मुझे इसमें फजीलत अता फरमाई। और अगर कोई दुनिया से ये रुखसत होने वाला है और आपको पता है कि ये रुखसत होने वाला है तो अब नज़ा का आलम है, तो उस वक़्त उसको तसल्लियाँ ना दिलाएं कि तुम्हें शिफा हो जाएगी, बल्कि उस वक़्त उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करें। और जब आप मरीज़ के पास जाएं या मैयत के पास जाएं, मरीज़ के पास या मैयत के पास, दोनों के पास बात करने से पहले, मुँह से कोई बात निकालने से पहले याद रखें कि खैर की बात निकालें, क्यों? इसलिए कि वहाँ पे फरिश्ते मौजूद होते हैं, वो आमीन कहते हैं आपकी बातों पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरीज़ या मैयत के पास खैर की बात करो, इसलिए कि जो कलिमा तुम ज़ुबान से निकालते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। तो अच्छा ही कहें, वहाँ पे फरिश्ते अच्छा लिखेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। और बीमारी के अंदर बीमारी को बुरा भला ना कहें, बीमारी को बुरा भला कहने से परहेज़ करें। ओके, ये अल्लाह की तरफ से आई है और आपको क्या पता कि उसके अंदर भी खैर हो, उससे भी गुनाह झड़ रहे हों। बीमारी में तो गुनाह इस तरह झड़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसको बीमारी या कोई और तकलीफ़ पहुंची मगर अल्लाह ताला इसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जिस तरह दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, यानी इतनी तेज़ी से उसके गुनाह झड़ते हैं। आपने देखा खिज़ा में कैसे पत्ते झड़ते हैं। तो इसलिए इसको बुरा भला ना कहें कि उसकी शिकायतें कर रहे हैं और ये क्यों हो गई मुझे और ये क्या हो गया। एक दफ़ा पे हज़रत शिदाद और हज़रत सनाबही बयान करते हैं कि हम दोनों किसी बीमार की आदत के लिए गए तो उससे पूछा कि कैसे हो, वो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत शिदाद बोले तुझे तेरे गुनाह माफ़ होने और तेरी ख़ताओं के ज़ायल होने की खुशखबरी हो, मुबारक हो तुझे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आपने फरमाया बेशक अल्लाह फरमाते हैं जिस वक्त मैं किसी बंदा मोमिन की को आजमाइश में मुब्तला करता हूँ और वो आजमाइश के वक्त भी मेरी तारीफ़ व तहमीद करता है यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अपने बिस्तर से वो इस तरह गुनाहों से पाक उठता है जिस तरह पैदाइश के वक्त गुनाहों से पाक था। सुभान अल्लाह। तो इस पे सब्र करना, इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये इंसान को इस तरह पाक कर देती है। और इसको जो अमल वो नेकी का तंदुरुस्ती में किया करता था तो उसके उस अमल का सवाब उसी तरह जारी रहता है जिस तरह वो तंदुरुस्ती में किया करता था। अब मतलब वो बीमार हो गया, मिसाल के तौर पे तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता, तो अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से फरमाते हैं कि मैंने अपने मोमिन बंदे को बीमार करके इसको आजमाइश में डाला। तो अब वो तो ज़ाहिर है नेकी का काम नहीं कर सकता, तो इसके अमल, इसके उस अमल का सवाब उसी तरह जारी रखो जिस तरह वो तंदरुस्ती में किया करता था, कि अब वो बेचारा नहीं कर सकता तो अब इसका देखो सवाब को ख़त्म नहीं करना, अब जारी रखो इसका सवाब। तो सुभान अल्लाह, इस हालत में भी अल्लाह ताला उसको नहीं भूले बल्कि और ज़्यादा उसके रहमतों से नवाजते हैं। कुछ नहीं वो कर रहा मगर जो उसकी रूटीन के काम थे जो एवरीडे किया करता था नेकी के काम, अब नहीं कर पा रहा, मुफ्त में बैठे बिठाए उसको मिल रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखी जाए, अल्लाह ताला से बदगुमान ना हुआ जाए। लेकिन अल्लाह ताला तो उस वक्त भी अपनी रहमतों के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे, और इंसान अगर गिले शिकवे करे और शिकायतें करे और कुछ बुरा भला कहे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देखें आजमाइशें तो बड़ी आजमाइशें जो हैं वो अंबिया पे आया करती थी, फिर जो उससे कम दर्जे के, उनसे कम दर्जे के जो ईमान में दीन में उनके ऊपर आती हैं, फिर जो उनसे कम दर्जे के, तो तकलीफ दुख दर्द गम परेशानियाँ मुसीबतें ये तो इंसान की जैसी हालत होती है उसी के मुताबिक आती हैं जैसे उसका ईमान होता है। तो जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे इंसान की फिर ये हालत हो जाती है कि वो ज़मीन पर चल रहा होता है तो गुनाहों से बिल्कुल पाक होता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं। आप अगर बीमार हों तब भी सब्र से काम लें और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि मुसलमान की बीमारी इस तरह गुनाहों को साफ़ कर देती है जिस तरह आग सोने और चांदी के मैल को, ये एक हदीस से हमें पता चलता है। तो और अगर आप बीमार पुरसी के लिए जाएं तो तब भी आपने क्या करना है, कोई ऐसी मसलन कोई बहुत देर से बीमार है, बहुत अरसे से बीमार है, अब आप उसको जाके पूछें कि अच्छा फिर तुम्हारी बीमारी कैसे शुरू हुई, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। अब आप खुद सोचें कि वो अगर 10 लोग उसका हाल पूछने के लिए आते हैं और 10 के 10 लोग उससे शुरू से आखिर तक कहानी सुनते हैं तो उसका क्या हाल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी बातें ना की जाएं जिससे उसको तकलीफ़ दी जाए। खुद को उसकी जगह पर रख के सोचें और फिर ये सोचें कि मुझे इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होगी। क्या मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्या मैं किसी के अपने पास बैठना पसंद करूँगी इस वक्त। तो जिस तरह आप अपने लिए पसंद करें उसी तरह उसके लिए पसंद करें। अच्छा इसके अंदर ये भी है कि कोई भी बीमारी में शिरकिया अमाल से और तावीज़ गंडों से इंतहाई सख्ती से मना फरमाया गया है। तो ऐसे कोई भी काम ना किए जाएं कि बजाय इसके कि आप अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हों, उल्टा अल्लाह ना करे कि शैतान के रास्ते पर चल पड़े। अगर इलाज भी करना कुरानी दुआओं से ही करना है इंशाअल्लाह। अच्छा जो आज के लिए आपकी इस मंथ की दुआ है, बहुत अहम दुआ है, मेरे ख्याल में आप सबको इसको याद करना चाहिए, इसको रोज़ाना पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें। दुआ थोड़ी सी लंबी है लेकिन उसकी वजह से घबराना नहीं है आपने, मगर प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ इस दुआ को प्लीज़ याद करें। ये दुआ है आफ़ियत की दुआ। आफ़ियत किस किस को चाहिए आप में से, कौन कौन खैरियत चाहता है, आफ़ियत चाहता है, भलाई चाहता है। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है कि जैसे आप कहते हैं ना, मेरी दुनिया में भी खैर हो जाए, मेरी आखरत में भी खैर हो जाए, तो वो ही ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह मैं दुनिया और आखरत में आपसे आफियत मांगता हूँ, आफियत चाहिए मुझे, खैरियत चाहिए मेरी दुनिया में भी। आप देखें वैसे तो आप छोटी छोटी दुआएं मांगे ना कि अल्लाह मुझे सेहत दे, अल्लाह मेरा रिस्क कुशादा कर दे, अल्लाह ताला सब उसके साथ भी भलाई हो जाए, अल्लाह मेरी दुनिया के ये कामों में भलाई हो जाए, आखरत में मेरा लिए आसान हिसाब किताब करना। और आपने एक बात कह दी, अल्लाह मुझे आफियत देना दुनिया और आखरत में, सारी दुआएं इसमें आ गई। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफवा, ए अल्लाह मैं आपसे गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ। और वल आफियता फ़ी दीनी, और आफ़ियत चाहती हूँ, खैरियत चाहती हूँ, किस में, चार चीज़ों में मांगी गई, ये अहम तरीन चार चीज़ें, दीन जिसके ऊपर आपकी आखरत भी डिपेंड करती है, वह दुनिया या और दुनिया मेरी जिसकी इंसान को फिक्र होती है, दुनिया में खैरियत होगी तो वो आखरत के लिए भी कुछ काम कर सकता है, उसकी परेशानियों से दिमाग फारिग होगा तो वो कुछ ध्यान लगा सकता है ना किसी और चीज़ की तरफ। वह अहली, और मेरे घर वालों, यानी आपके घर वालों को अगर कोई तकलीफ़ है तो देखिए आपकी भी बेचैनी है, आपको भी बेसकूनी है, तो अल्लाह उनको भी आफ़ियत में रखना। वह माली, और मेरे माल में, मेरी कोई जॉब है, मेरा कोई काम कारोबार है, या मेरी जो सेविंग्स है अल्लाह, या मेरा जो और भी सारा आपका माल ही है ना, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई गोल्ड है, अल्लाह सबको आफियत से रखना। मेरा काम रोज़गार, इसकी भी आफियत रखना। अल्लाहुम्मा अस्तुर आउराती, ए अल्लाह मेरे ऐबों को ढांप दे, अगर हमारे ऐब लोगों के सामने खुल जाएं तो लोग तो हमसे कितने दूर भाग जाएंगे, आपके घर वाले भी आपके करीब नहीं आना चाहेंगे। अगर इंसान के ऐब अल्लाह ताला ना ढांपे तो इतने हमारे अंदर ऐब हैं। वह आम रो आती, और अल्लाह मुझे खौफ की चीज़ों से बेफिक्र कर दे, जितनी खौफ की चीज़ें हैं, चाहे वो हशरातुल अर्द है, सांप बिच्छू ये चीज़ें हों, या फिर वो फ़क्रो फाका हो, बीमारी हो, जिनसे मुझे खौफ आता है, अल्लाह मुझे उनकी तरफ से बेफिक्र कर दे। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा फ़ज़नी मिन बैनी यदय्या व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौकी व अऊज़ु बिअज़मतिका नौ तआला मिन तहती। अल्लाह मेरे सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से मेरी हिफाजत कर, और मैं आपकी अजमत की पनाह लेता हूँ इस चीज़ से कि मैं नीचे से हलाक किया जाऊँ। चारों तरफ से इंसान ने अल्लाह की पनाह ले ली, चारों तरफ से जो इंसान शील्ड अपने गिर्द समझ लें कि जो इंसान अपने गिर्द हिसार उसने बना लिया कि मैं अल्लाह की पनाह में आ गया हूँ, चारों तरफ से अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ गया हूँ, तो उसको किस चीज़ का फिर डर रह जाता है। तो बहुत अहम दुआ है, इस अहम दुआ को अपनी दुआओं में शामिल करें, इसको याद करें, इसको जब आप सलाम फेरने से पहले आप नमाज में भी कह सकते हैं, इस दुआ को मांग सकते हैं, इस नमाज के बाद भी मांगे, सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी अहम दुआ है, सुबह शाम की दुआओं में भी है, आपको मिल जाएगी। और इस मंथ का जो आपका जिक्र है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, आज मैंने इसकी क्या फजीलत बताई है, 99 बीमारियों की शिफा है इसमें, जिनमें सबसे कम है फिक्र और परेशानी से निजात। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।